बुल्ले शाह की काव्य विधा पृष्ठ 53। पंजाबी सूफी काव्य के संदर्भ में पंजाबी सूफी काव्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। पंजाबी सूफी काव्य आमतौर पर संगीतबद्ध है। शाह हुसैन और बुल्ले शाह के काफिये वह मधुर गीत है जो साधक की हृतंत्री को छू लेता है। यह गीत अपने दार्शनिक तत्व को प्रदर्शित करते हैं। बाबा फरीद के समय से सूफी कवियों ने पद एवं काव्य के प्रख्यात रूपों को अपनाया था। बाबा फरीद ने अधिकांशतः श्लोक और पद लिखे थे। उनके पद तथा शाह हुसैन व बुल्ले शाह के काफिये राग रागिनियों में बद्ध थे। सूफी कवियों ने प्रमुख रूप से जिन पद विधाओं का प्रयोग किया था वह है दोहिरा, दवैया, चौपाई और बैत। उनके द्वारा प्रयुक्त कविता या काव्य के रूप थे। काफियां दोहरे, बारह माह, सिहर्फी, अठवारा आदि। सूफी काव्य में कल्पना और लक्षणों की भरमार है। जहां फारसी सूफी काव्य में सुराही और पियाला की कल्पनाएं प्रसिद्ध थी, वहां पंजाबी सूफी काव्य में प्रमुख कल्पनाएं थी त्रिजना अर्थात चरखे की बहने और झाना अर्थात प्रेम सरिता या चिनाब। जहां एक ओर हीर और रांझा के प्रेम ने किस्सा कवियों को आकृष्ट किया, वहां दूसरी ओर इसने सूफी कवियों को हीर अर्थात आशिक या प्रेमी और रांझा माशूक या प्रियतम के दो संकेत या लक्षण प्रदान किए। संसार के लिए संकेत है पेका घर अर्थात माँ बाप का घर, और भगवान के घर के लिए सोहुरा घर अर्थात ससुराल। पेका घर में त्रिजन है जहां कन्या की अपनी सहेलियों के साथ अपने स्वामी के लिए एक यथोचित भेंट तैयार करनी पड़ती है। उसे अपने शरीर रूपी चरखे पर गुड़ रूपी सूत तैयार करना होता है। सूफी काव्य में सांसारिक मनुष्य को मुसाफिर और सौदागर के रूप में लक्षित किया गया है। यह संसार मार्ग में एक सराय के समान है जहां मुसाफिर या सौदागर थोड़े समय के लिए ही टिकता है। बुल्ले शाह ने परमात्मा के लिए कृष्ण और राम के लक्षणों का प्रयोग किया है। वृंदावन में गयों चराए, लंका चढ़ के नाद बजाए। पृष्ठ 54। मक्के दा हाजी बढ़ आए, वाह वाह रंग विताई दा, हुड़ किस्तो आप छिपाई दा। अर्थात आप वृंदावन में तो गौवे चराते हो और लंका में नाद बजाते हो, आप मक्का के हाजी भी बन जाते हो। वाह, आप अपना रंग रूप एकदम बदल लेते हो, अब आप स्वयं को किससे छिपा रहे हो। सूफी कवियों ने पंजाबी काव्य को अति समृद्ध व संपन्न बनाया। उन्होंने अपने पद्यों में पंजाबी संस्कृति को बड़े स्पष्ट रूप से झलकाया है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ढंग द्वारा सामान्य तौर पर भारतीय संतों तथा गुरुओं से संबंधित भारतीय जीवन की उन्नति के लिए महान योगदान दिया। बुल्ले शाह की काव्य विधा। कालाइल ने सरतोर रेस तर्स में लिखा है, यह जगत स्वयं परमात्मा का ही है, एक विशाल प्रतीक है, अतः मनुष्य स्वयं भी ब्रह्म का ही एकमात्र रूप या लक्षण है। इस प्रकार सृष्टा ने सृष्टि में नाना रूपों की रचना की। कवि या कलाकार जिस किसी कविता या कलाकृति की रचना करता है वह अपनी रचना में विभिन्न रूपों और आकारों को जन्म देता है, वह उसकी कल्पना मात्र होते हैं। रहस्यवादी या ईश्वर प्रेमी का मन इस अनंत सृष्टि में कहीं भी और सर्वत्र भगवान के दर्शन कर सकता है। वह परमात्मा को किसी भी रूप में स्वर्ग में या पाताल में या भूलोक में देख सकता है। बुल्ले शाह दोनों ही हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी भी, अतः उनका अद्वैत ब्रह्म सर्वव्यापी है, वह सर्वस्थित है। ईश्वरानुराग भूति की घड़ियों में बुल्ले ने कहा है, हुड़ किस थी आप छपाईदा, किते मुल्ला हो बुलेंदे हो, किते सुन्नत फर्ज दिसेंदे हो, किते राम दुहाई देंदे हो, किते मत्थे तिलक लगाईदा, बेली अल्लाह वाले मालिक हो, तुसी आपे अपने सालिक हो, आपे खलकत आपे कालिका हो, आपे अमर मारूफ कराइंदा किधरे चोर हो किधरे काजी हो किते मेंबर ते वेह वाजी हो किते तेग बहादुरी गाजी हो आपे अपना कतई चढ़ाइंदा। पृष्ठ 55। बुल्ला शाह हुण सही सिंझाते हो हर सूरत नाल पछाते हो किते आते हो किते जाते हो हुण मैथो भूल ना जाइंदा हुण किस तो आप छपाइंदा। अर्थात आप किससे छिपोगे, कहीं आप मुल्ला बनकर अपने भक्तों को पुकारते हो तो कहीं आप हमें हमारा कर्तव्य बताते हो, कहीं आप राम के रूप में न्याय के लिए चिल्ला उठते हो तो कहीं आप माथे पर तिलक धारण करते हो। हे अल्लाह आप ही मालिक और आप ही सालिक अर्थात साधक हो, आप ही खलकत अर्थात सृष्टि और आप ही खालिक अर्थात श्रेष्ठा हो, आपने स्वयं ही अपनी रचना की है, आप अपने आदेश का स्वयं ही पालन करवाते हो, कहीं शहीद तेग बहादुर हो तो कहीं आप अपनी सेना लड़ाई के लिए भेजते हो। बुल्ले शाह ने अब आपको भली भांति पहचान लिया है, मैंने तो आपको सभी रूपों में जान लिया है, आप कहीं आते हो कहीं जाते हो, अब आप मुझसे विस्मृत हो जा मत होना, अब आप स्वयं को किससे छिपाओगे। किंतु बुल्ले ने स्वयं के लिए तथा अल्लाह या ईश्वर के लिए एक विशेष रूप नारी बनाया है अर्थात अपनाया है, वह अपने इष्ट से प्रगाढ़ अनुराग करते हैं, इसलिए वह उसकी पत्नी या नारी के रूप में व्यवहार करते हैं ताकि वह अपने इश्क या प्रेम की गहनता को प्रदर्शित कर सके। वह सुप्रसिद्ध आशिक अर्थात प्रेमी हीर का रूप धारण कर लेते हैं जो अपने महबूब अर्थात प्रियतम रांझा की खोज में है। भक्ति आंदोलन के अन्य संतों की भांति इस पंजाबी सूफी ने भी स्वयं हेतु नारी को ही अपना प्रतीक बनाया है। इस पद्धति की तुलना उस फारसी सूफियों से की जा सकती है जो मजनू और फरहाद जैसे पुरुषों के रूप में लैला और शीरी जैसे प्रेमिकाओं के वियोग में दुर्बल हो जाते हैं। भारतीय सूफियों ने तो भारतीय संतों के प्रतीक में ही अपनाए हैं, वह तो भरत मुनि के ही पुत्र बन गए। पहले शाह हुसैन ने अपने काफियों में हीर और रांझा के लक्षणों का प्रयोग किया था, इस बात में बुल्ले शाह ने भी उसका अनुमान किया। अपने हृदय में प्रियतम रांझा के प्रति धिक्र सहित हीर ने अपने इष्ट या स्वामी के साथ सायुज्यता प्राप्त कर ली। ईश्वरानुभूति होने पर रहस्यवादी बुल्ला इस प्रकार गाने लगता है, रांझा रांझा कर देनी मैं आपे रांझा होई, संदोनी मैनु धेदो रांझा हीर ना आखो कोई। अर्थात अपने स्वामी रांझा के नाम की रट लगाते लगाते मैं तो स्वयं ही रांझा बन गई, अब मुझे हीर नाम से कोई न बुलाए, मुझे तो अब धींदो रांझा कहो। हीर रांझा के प्रेम में रांझा हीर से मिलने अपने उसके ससुराल जाने के लिए अपने गांव तख्त हजारा से एक योगी के वेश में आता है। हीर वियोग के लंबे समय के बाद अपने प्रियतम रांझा से मिलकर हर्षोन्मत हो जाती है। बुल्ले शाह भी अपने इष्ट के आगमन पर हीर के समान ही गा उठते हैं। बुल्ला शाह दी ए गत पाई पीत पुरानी शोर मचाई, ए गल की कु छपाई छपाई नी तख्त हजारियो धाया, रांझा जोगीड़ा बड़ आया वा सांगी सांग रचाया। अर्थात बुल्ले शाह ने ईश्वर का यह रहस्य जान लिया, उसने पुराने प्रेम का प्रत्युत्तर दिया है। यह बात किससे छिपाई जा सकती है, वह तख्त हजारा से आया है, राजा रांझा एक योगी के वेश में आया है, इस बहुरूपी ने कैसा सुंदर स्वांग बनाया है। इश्क या प्रेम ही बुल्ले शाह के काव्य का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने इस संबंध में अनेक कल्पनाएं भी की थी। इश्क को बाघ कसाई बिगुल मुल्ला आदि का रूप भी दिया गया। बाघ के रूप में वह मांस खाता है और खून पीता है। कसाई के रूप में इसने मध्य पूर्वी और भारतीय इतिहास एवं पुराणों के रूप के उस उन अनेक ईश्वर प्रेमियों का गला काट दिया जिनके नाम बुल्ले शाह ने वर्णित किए हैं। उस परमात्मा की अनुभूति करना ही प्रत्येक मनुष्य का परम उद्देश्य है, जिसका निवास स्थान ही सब आत्माओं का डेरा है। अतः प्रत्येक मनुष्य को उस कन्या या बालिका का ही प्रतीक माना जाता है जिसे एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति या स्वामी के घर जाना पड़ता है। इस रूप में यह संसार पी का घर अर्थात पीहर है और दैवी लोक है सौहरा घर अर्थात ससुराल। किंतु उस बालिका का अपने पति या स्वामी के घर बड़े आदर पूर्वक स्वागत होगा जिस बालिका ने अपने स्वामी के लिए एक तोहफा तैयार किया हो। बुल्ले शाह ने सांसारिक मनुष्य को कुड़ी अर्थात कन्या या बालिका कहा है। बालिका या कुड़ी को अपने चरखे रूपी तन पर अपने दैवी गुणों रूपी दहेज को तैयार करना होता है। यद्यपि हमारी आत्मा हमारी देह के भीतर ही होती है, तथापि हमें स्वामी का प्रिय बनने के लिए दैवी गुणों को धारण करना पड़ता है। बुल्ले शाह के शब्दों में, कर कत्तन वल ध्यान कूड़े चरखा बढ़िया खातिर तेरी खेऊन दी कर हिरस थोड़े री होना नहीं होर वदेरी मत कर कोई अज्ञान कूड़े राज पेका दिन चार कूड़े। पृष्ठ 57। ना खेड़ो खेड़ गुजार कूड़े घर बार ना कर वीरान कूड़े जद घर बेगाने जावेंगी मुड़ वत ना ओथो आवेंगी ओथे जा के पछतावेंगी कुछ अज्ञो कर समियान कूड़े अर्थात ओ कूड़े अर्थात बालिका चरखा कताने काटने पर ध्यान लगा। तेरी खाते ही चरखा बनाया गया है, अब खेल कूद में ध्यान मत लगा। तू बालिक हो चुकी है इसलिए अब इस विषय में अज्ञानी मत रह। माँ बाप के घर तो तुझे बहुत कम समय रहना है इसलिए उसे खेल कूद में मत गुजार। तू काम कर समय मत गवा, अपने घर को वीरान मत बना। जब तू दूसरे घर अर्थात ससुराल जाएगी तो वहां से वापस नहीं आ पाएगी, फिर तुझे पछतावा होगा। बुल्ले का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की अनुभूति कराना, किंतु वह केवल मुर्शीद के मार्गदर्शन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अतः उनके पद्यों में मुर्शीद या गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा स्पष्ट रूप से झलकती है। उन्होंने अपने मुर्शीद इनायत शाह को प्राय यार अर्थात प्रियतम, प्यारा अर्थात ईश, माही अर्थात रांझा, तबीब अर्थात चिकित्सक आदि कहकर संबोधित किया है। इनमें से कुछ विशेषणों का प्रयोग बुल्ले शाह ने परमात्मा के लिए भी किया है, क्योंकि उच्च आध्यात्मिक अवस्था में परमात्मा और मुर्शीद एक हो जाते हैं। बुल्ले शाह के लिए चंदल और झना अर्थात चेनाब नदी एक प्रेम प्रतीक है, क्योंकि ही रांझे का प्रेम इसी नदी के तट पर हुआ था। रांझा के समान धोला शब्द का प्रयोग भी ईश्वर के लिए ही किया गया है। मुर्शीद को कलाल अर्थात शराब बेचने वाला भी कहा गया है। साधक अथवा साले को बकरा कहा गया है। नीम वर्ण को अहद अर्थात निर्गुण के साथ जोड़ने पर या एन के नीचे नुक्ता या बिंदु लगा देने पर वह ईश्वर के सगुण रूप का द्योतक बन जाता है। अहद मीम के साथ जोड़ने पर अहमद या नुरुल मोहम्मद दिया बन जाता है। सांसारिक मनुष्य को सौदागर कहा गया है और यह संसार एक सराय है। मृत्यु उस कौवे का प्रतीक है जो बालिका की रुई या उसके बुने सूत को एकदम झपट कर ले जाएगा। हिरण भी मृत्यु का द्योतक है, किंतु कान शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए, गोपी शब्द का प्रयोग साधक के लिए तथा मुरली के स्वर का प्रयोग प्रेम चिंगारी के लिए किया गया है। मुर्शीद को उस जुलाहे का प्रतीक माना गया है जो बालिका अर्थात साधक द्वारा बुने सूत को ताणी अर्थात ताना बाना का रूप देता है। बुल्ले शाह के काव्य में हमें इसी प्रकार के लक्षण या प्रतिबिंब मिलते हैं। समाप्त।